नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच सरकार ने आश्वस्त किया, देश में सभी तरह की फसलों के बीज और कृषि रसायन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। नए वित्त वर्ष के पहले दिन आज से आयकर अधिनियम 2025 लागू। केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित 8 राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मौजूदा सरकार ने अब तक 1,25,000 नियुक्तियां दी। और प्रदेश में 262 चयनित स्थानों पर करीब 600 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच सरकार ने आज आश्वासन दिया कि देश में सभी तरह की फसलों के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक में कृषि और किसान कल्याण विभाग की अपर सचिव डॉ मनिंदर कौर द्विवेदी ने बताया कि देश भर में खरीफ फसलों के 185 लाख क्विंटल से अधिक बीज उपलब्ध हैं। अपर सचिव ने कहा कि देश में कृषि रसायनों की भी पर्याप्त उपलब्धता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने अगले 2 महीनों के लिए कच्चे तेल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है। संयुक्त सचिव ने यह भी बताया कि देश की रिफाइनरियां अपनी अधिकतम क्षमता के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में उतार चढ़ाव के असर से घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम किया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए राजस्थान सहित 8 राज्यों को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों की स्थानीय जरूरतों को पूरा करने और विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस बजट का एक हिस्सा विशेष रूप से स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, बारिश के पानी के संग्रह और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर खर्च होगा। नए वित्त वर्ष के पहले दिन आज से आयकर अधिनियम 2025 लागू हो गया है। इस अधिनियम ने 6 दशक से भी अधिक पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लिया है। इसके जरिए जटिल नियमों को सुव्यवस्थित करने के साथ ही करदाताओं के लिए कर प्रणाली को आसान बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार आज से देश में सभी डिजिटल भुगतान लेन देन के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन मानदंड भी लागू हो गए हैं। आज से ही तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलो वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 195 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। वार्षिक फास्टैग पास के लिए भी आज से वाहन चालकों को 3,075 रुपए देने होंगे। रेलवे ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए आज से आरक्षण चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव किया है। अब ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट रवानगी से करीब 8 घंटे पहले तैयार हो जाएगा, जो पहले 4 घंटे पूर्व बनता था। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि इस नई व्यवस्था से यात्रियों को टिकट कंफर्म होने की स्थिति का समय रहते पता चल सकेगा। इससे यात्री अपनी यात्रा के लिए समय पर वैकल्पिक व्यवस्था भी कर सकेंगे।
हम लोगों ने नया रिफंड का रूल जो किया है कि भाई आप 72 आवर्स से पहले अगर अपने टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको फुल रिफंड मिलेगा। 72 से अगर 24 आवर्स तक आप कैंसिल करते हैं तो आपको 75% रिफंड मिलेगा। अगर 24 से 8 आवर के बीच में आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 50% रिफंड मिलेगा। और 8 आवर जो कि हमारा चार्टिंग का भी टाइम है, उससे पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तब आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो इससे यात्रियों को सबसे बड़ा कन्वीनियंस ये होगा कि उन्हें अपने चार्ट प्रिपरेशन का जो टाइम है उसके साथ में रिफंड रूल को कंसोलिडेट कर दिया गया।
जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना होगी। इस चरण में मकान सूचीकरण होगा और आवास से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। पहली बार डिजिटल रूप से होने वाली इस जनगणना में स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। राजस्थान में स्वगणना अवधि 1 मई से 15 मई तक है। स्वगणना एक सुरक्षित वेब आधारित सुविधा है जिसके माध्यम से आमजन 16 भाषाओं में अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डिजिटल जनगणना के फायदों के बारे में बताया।
प्रथम चरण बेसिकली मकानों की गणना और मकान सूचीकरण है। इसमें अगर बाहर रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरे चरण में जब एक व्यक्ति की गणना कराते हैं तो उसमें जो बाहर रहने वाले हैं उनको एम्बेसी के माध्यम से उनकी गणना कराने की व्यवस्था है। डिजिटल में सबसे पहला फायदा तो यह है कि आंकड़े ज्यादा शुद्ध तरीके से संग्रहित होंगे। जो फिजिकल आंकड़े इकट्ठा करते हैं उनको डिजिटाइज करने में त्रुटियों की संभावना रहती है। जनगणना के आंकड़े हैं उनका प्रकाशन शीघ्रता से संपन्न हो सकेगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्कूलों को विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों और संस्कारों के विकास का प्रमुख केंद्र बताया है। श्री शर्मा आज जयपुर के राजा पार्क स्थित आदर्श विद्या मंदिर में नवनिर्मित बहुउद्देशीय सभागार के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को अहम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। युवाओं को 10 लाख रोजगार देने के लक्ष्य के साथ अब तक 1,25,000 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान को 81 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। इस योजना से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जाएगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से प्रदेश में 262 चिन्हित स्थानों पर 591 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा में मीडिया से बातचीत में इसे राज्य में हरित परिवहन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बताया।
हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं और जिस तरह से ये चार्जिंग स्टेशन लगेंगे तो अपने इन शहरों में ईवी की उपलब्धता बढ़ेगी और उससे वह पर्यावरण को लाभ मिलेगा और पर्यावरण शुद्ध होगा। मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो राजस्थान को तोहफा दिया है इसलिए उनका भी आभार व्यक्त।
राज्य के सरकारी स्कूलों में आज से नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ हुआ। प्रदेश भर के स्कूलों में विद्यार्थियों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर छात्रों को पाठ्य पुस्तकें मुफ्त दी गईं और उन्हें नए पाठ्यक्रम की जानकारी भी कराई गई। बालोतरा जिले के कोटेसो और बागावास स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश उत्सव मनाया गया जहां नए विद्यार्थियों का मुंह मीठा करवाकर प्रवेश दिया गया। वहीं झुंझुनू के बीबासर स्थित पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पहले ही दिन 27 बच्चों ने प्रवेश लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय बेनीवाल ने बताया कि नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षकों द्वारा पिछले एक पखवाड़े से घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है।
जो हमारे टीचिंग स्टाफ हैं, प्रत्येक घर घर में जाके सभी से डोर टू डोर संपर्क किया गया है और उसी का ये नतीजा है कि आज प्रथम दिवस में 27 जो नव नामांकन प्रवेश हुए हैं और लॉटरी के तहत भी 21 बच्चों का ऑनलाइन आवेदन हुआ था। ये हमने के लिए हम शिक्षा मंत्री महोदय और निदेशक महोदय का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया जिससे पिछले वर्ष जो बच्चे प्राइवेट विद्यालय में चले गए थे और नामांकन में काफी गिरावट हुई थी उसमें इस बार अवश्य सुधार होगा।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने पाली जिले के जवाई क्षेत्र में तेंदुए और अन्य वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए रात्रि सफारी पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने क्षेत्र में बढ़ती अनियंत्रित पर्यटन गतिविधियों के मद्देनजर ये आदेश जारी किया है। इसके तहत अब जवाई क्षेत्र में सफारी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही की जा सकेगी। वहीं रात के समय सफारी पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही वन्य जीवों को ढूंढने के लिए ड्रोन, स्पॉटलाइट और टॉर्च जैसी कृत्रिम रोशनी के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वन्य जीवों को किसी भी तरह से परेशान करना दंडनीय होगा। हनुमानगढ़ के जंक्शन क्षेत्र में आज सादुल ब्रांच नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 3 युवक नहर में पूजा सामग्री प्रवाहित करने गए थे। सूचना मिलते ही जंक्शन थाना पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद तीनों युवकों को नहर से बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया। राज्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित विकास के लिए भरतपुर जिले में पीएम सूर्यघर और कुसुम योजना के तहत 21 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत भरतपुर मुख्यालय सहित नदबई, वैर, बयाना, रूपवास और छोकरवाड़ा में 1928 सरकारी भवनों की पहचान की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक 20 सरकारी भवनों पर सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 60 अन्य भवनों पर काम प्रगति पर है।
पीएम सूर्यघर एवं कुसुम योजना के तहत भरतपुर जिले में 21 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए विभिन्न एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत करीब 1400 घरों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भरतपुर जिले में अब तक 5 सोलर प्लांट भी स्थापित किए जा चुके हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
कल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने समाज में सभी स्तरों पर जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने ऑटिज्म पीड़ित व्यक्तियों को समान अवसर, समर्थन और सम्मान उपलब्ध कराने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच सरकार ने आश्वस्त किया, देश में सभी तरह के फसलों के बीज और कृषि रसायन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। नए वित्त वर्ष के पहले दिन आज से आयकर अधिनियम 2025 लागू। केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित 8 राज्यों को ग्रामीण विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मौजूदा सरकार ने अब तक 1,25,000 नियुक्तियां दी। और प्रदेश में 262 चयनित स्थानों पर करीब 600 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।